नमस्कार भारत, आज है 19 मई दिन शनिवार। मैं हूं कुलदीप मिश्र। क्यूबा में बड़ा विमान हादसा, 100 से ज्यादा की मौत।
Tenemos que esperar que las noticias no son nada halagüeñas porque hay un alto número.
कर्नाटक में येदियुरप्पा रहेंगे या जाएंगे, फैसला आज, साबित करना होगा बहुमत।
जो कुछ भी करना है सदस्यों को करना है, जो हाउस के अंदर सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो स्पीकर होता है वहाँ पर। कई बार अंदेशे होते हैं कि विवाद होगा, झगड़ा होगा, वो अंदेशा आज के मत विभाजन को लेकर ये भी है।
और अमेरिका के एक स्कूल में फिर चली गोलियां, 10 की मौत।
I heard that my friend got shot in the art hole. And as soon as the alarms went off, everybody just started running outside.
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। क्यूबा की राजधानी हवाना में हुए एक विमान हादसे में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा होजे मार्टी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास हुआ। देश की सरकारी एयरलाइन क्यूबा डे एविएशन का बोइंग 737 विमान हवाना से 700 किलोमीटर दूर होलगन शहर जा रहा था। इस विमान में 104 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 6 क्रू मेंबर भी इस विमान में मौजूद थे। कर्नाटक में आज नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय जनता पार्टी को शनिवार 4 बजे तक कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। इससे पहले राज्यपाल की ओर से येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय मिला था। येदियुरप्पा ने शुक्रवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अमरीका के राज्य टेक्सस में एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इतने ही लोग घायल हो गए। मरने वालों में स्कूल की एक अध्यापिका भी शामिल हैं। गोलीबारी की इस घटना में जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया उसकी पहचान 17 वर्षीय दिमित्रोस पेगोरिड्स के रूप में हुई है। वह स्कूल का ही छात्र है। टेक्सस के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने बताया है कि हमलावर के पास अपने पिता की 2 लाइसेंसी बंदूकें थीं। इससे पहले फरवरी महीने में फ्लोरिडा में एक स्कूल में भी गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस स्कूल में पढ़ने वाली लुइस मिजेन ने बताया, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ के स्कूली छात्रों के भीतर क्या चल रहा होगा। वे भी अब उस क्लब में शामिल हो गए हैं जिसका हिस्सा कोई नहीं बनना चाहता। यह बहुत ही भयावह है। हमने एक अभियान शुरू किया था कि अब कभी नहीं, लेकिन ऐसी घटना दोबारा हो गई। ये थे अमरीका के एक स्कूली छात्र के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन ने गजा में फिलिस्तीनियों के साथ इसराइल के बर्ताव की तुलना दूसरे विश्वयुद्ध में नाजियों की तरफ से यहूदियों के साथ किए गए बर्ताव से की है। मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों की एक आपातकालीन बैठक को संबोधित करते हुए अर्दोआन ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यातना शिविरों में जिस तरह की यातनाएं या नाजियों की तरफ से यहूदियों को दी जाती थी, वैसा ही बर्ताव फिलिस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। 75 साल पहले यूरोप में जिस तरह की क्रूरता का सामना यहूदियों ने किया था, उसमें और गजा में मौजूद हमारे भाइयों के हालातों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन के शब्द। इराक के निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि पूर्व शिया सेना के प्रमुख मुक्तादा अल सद्र के राजनीतिक धड़े ने संसदीय चुनावों में जीत दर्ज की है। अल सद्र लंबे समय से अमेरिका के विरोधी रहे हैं। इराक में हुए संसदीय चुनावों में वे खुद मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन सत्ता कौन संभालेगा इसका फैसला अल सद्र ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री हैदर अली अब्दी का दल तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा ईरान के समर्थन वाले शिया अर्धसैनिक बलों के समूह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पूर्वी अफगानिस्तान में एक क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को एक आत्मघाती बम धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार जलालाबाद शहर में जिस वक्त यह धमाका हुआ उस समय एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल की आज शादी है। लंदन में होने वाली इस शाही शादी के समारोह में दुनिया भर से कई लोग हिस्सा लेने पहुँच रहे हैं। वहीं करोड़ों लोग इस शादी का सीधा प्रसारण टीवी पर देखेंगे। शुक्रवार को प्रिंस हैरी ने विंडसर महल के पास मौजूद अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। आज कर्नाटक की राजनीति में बड़ा दिन है, जहां संभवतः ये तय हो जाएगा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी या नहीं। इस खबर के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से, एक हमला और एक हादसा। क्यूबा की राजधानी हवाना के पास कल यात्रियों से भरा एक विमान उड़ते ही एक तकनीकी खामी का शिकार हो गया और ज़मीन पर आ गिरा। इस हादसे में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस विमान में सवार सिर्फ 3 यात्रियों की जिंदा बचने की खबर है और उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। ब्यौरा सुनिए नवीन नेगी से।
क्यूबा की राजधानी हवाना के आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा था। लोगों की चीख पुकार के साथ राहत और बचाव कर्मियों की आवाज़ें शामिल थीं। ये मंजर था हवाना से करीब 13 किलोमीटर दूर होजे मार्टी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का, जहां सरकारी एयरलाइन क्यूबा डे एविएशन का विमान बोइंग 737 उड़ान भरने से कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय मीडिया से मिल रही खबरों के मुताबिक यह विमान हवाना से होलगन शहर जा रहा था। होलगन राजधानी हवाना से 700 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर स्थित है। खबरों के मुताबिक इस विमान में कुल 104 यात्री सवार थे, जबकि केबिन क्रियो के 6 सदस्य मौजूद थे। मरने वालों की संख्या 100 के पार बताई जा रही है। क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्रैनमा के मुताबिक इस हादसे में सिर्फ 3 लोगों को जिंदा बचाया जा सका है, हालांकि उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। क्यूबा में पिछले महीने ही नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल ने सत्ता संभाली है। विमान हादसे के कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति मिगेल डियाज दुर्घटना स्थल पहुंचे और उन्होंने वहां हालात का जायजा लिया। राष्ट्रपति मिगेल डियाज ने पत्रकारों से कहा, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी तक जो खबरें मिल रही हैं वे पूरी नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि इस हादसे में कई लोगों की जान गई है। सरकार और पार्टी की तरफ से मैं पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये थे क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल के शब्द। हादसे के समय मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। उसके बाद विमान को एयरपोर्ट के पास ही एक खेत में उतारने की कोशिश की गई और इसी दौरान विमान में आग लग गई। क्यूबा की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक यह विमान मेक्सिको की एक चार्टर कंपनी दमोज का था और क्यूबा की सरकारी एयरलाइन ने इसे लीज पर लिया हुआ था। ट्रैवल जर्नलिस्ट सिमोन कैल्डर ने बीबीसी के कार्यक्रम द ट्रैवल शो में बताया कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यानी बोइंग 737 का सुरक्षा रिकॉर्ड आमतौर पर अच्छा रहा है। सिमोन कैल्डर ने बताया,
In terms of scheduled aircraft crashes, they have
अगर हम विमान हादसों के तौर पर देखें तो पिछले 18 सालों में इन विमानों का सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हालांकि 20वीं सदी के अंतिम 3 साल इन विमानों के लिए काफ़ी खराब रहे थे। उस दौरान इनमें 4 बड़े हादसे हुए, जिसमें साल 1999 के अंत में एक ही हफ्ते में 2 हादसे हुए थे। ये थे ट्रैवल जर्नलिस्ट सिमोन कैल्डर के शब्द। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान साल 1989 में बना था। मेक्सिको के परिवहन मंत्रालय के अनुसार पिछले साल नवंबर में इसका सफलतापूर्वक निरीक्षण भी किया गया था। फिलहाल प्रशासन ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।
नवीन नेगी से ब्यौरा सुन रहे थे आप। अगली खबर अमेरिका के टेक्सास राज्य की है, जहां एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक 17 वर्षीय संदिग्ध हमलावर दिमित्रोस परगोत्सिस ने को हिरासत में लिया गया है। वॉशिंगटन से इरम अब्बासी की रिपोर्ट सुनिए।
अमरीकी रियासत टेक्सास में सरकार का कहना है कि एक हाई स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 स्टूडेंट्स और एक टीचर शामिल हैं। हमले में 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। स्कूल के एक 17 साल बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह वाकया सेंटर फे स्कूल में पेश आया है। इस सिलसिले में टेक्सास के गवर्नर एबिट ने कहा,
The weapons used in this attack, there are two weapons.
वो कह रहे हैं कि हमले में 2 किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, एक शॉटगन और दूसरा रिवॉल्वर। ये हथियार हमलावर के पास कानूनी तौर पर नहीं थे। मेरी मालूमात के मुताबिक ये हथियार उसके वालिद के हैं और वालिद के पास ये हथियार कानूनी तौर पर है, लेकिन इस वक्त हम ये नहीं जानते कि क्या वालिद को इस हमले के बारे में पता है या नहीं। पुलिस ने स्कूल को घेरे में ले रखा है। स्कूल में बम डिस्पोजल स्क्वाड के अलावा फिजाई एम्बुलेंसेस भी पहुंची। مقامی سرکار کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر بارودی ڈیوائسز اسکول کے اندر اور باہر سے ملی ہیں اور ڈیوائسز کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اسکول کے کئی اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ مقامی وقت صبح 8 بجے فائر الارم بجنے لگا۔ سینٹا فے کے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا،
We heard the pops go off. We started running. But I like turned back around and they were arresting somebody.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گولی چلنے کی آواز سنی اور ہم بھاگنے لگے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پولیس نے ایک بچے کو پکڑا ہوا تھا آرٹس کلاس کے قریب دیوار کے پاس۔ میں یہ ریکارڈ کرنے لگی اور پھر باقی بچوں کے ساتھ بھاگنے لگی۔ شاید انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑا ہوا تھا، مجھے صحیح سے نظر نہیں آیا۔ کوئی شاید اس کی مدد کر رہا تھا جس نے الارم بجایا۔ پھر شوٹنگ شروع ہوئی اور شاید وہ یہی چاہتا تھا کہ سارے بچے باہر آئیں۔
I heard that my friend got shot in the art hall.
ایک اور اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرا دوست آرٹس کلاس میں مارا گیا ہے، اور جیسے ہی الارم بجا سب اسکول کے بچے بھاگنے لگے، اور پھر میں نے دیکھا کہ بوم 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 کی آواز گونجنے لگی۔ میں جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگنے لگی تاکہ قریب جنگل میں جا سکوں، اور پھر میں نے اپنی ماجی کو کال کیا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ٹیکسس کے اسکول میں فائرنگ ابتدائی رپورٹس اچھی نہیں ہیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ ایک بدترین واقعہ ہے، اور ان کی انتظامیہ اسٹوڈنٹس کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اسلحے کو ان ہاتھوں سے دور رکھنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے جو دوسروں کے لیے خطرہ ہے۔
We grieve for the terrible loss of life and send our support and love to everyone affected by this absolutely horrific attack.
امریکہ میں اسکولوں پر اس سے پہلے بھی بڑے حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں اپریل 2007 کا حملہ ہے جس میں ایک 27 سالہ کوریائی امریکی اسٹوڈنٹ نے ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں فائرنگ کی، جس میں 27 اسٹوڈنٹس اور 5 ٹیچرز مارے گئے تھے۔ پھر دسمبر 2012 میں نیو ٹاؤن میں 20 سالہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو مار کر قریبی اسکول میں فائرنگ کی۔ اس واقعے میں 20، 6 اور 7 سال کے بچے اور 6 دیگر افراد مارے گئے۔ پھر فروری 2018 میں ہی مین ڈگلس ہائی اسکول کے ایک پرانے اسٹوڈنٹ نے اسکول میں فائرنگ کی، جس میں 14 اسٹوڈنٹ اور 3 سٹاف ممبرز مارے گئے تھے۔ اس لڑکے کو اسکول سے نکالا گیا تھا۔ ارم عباسی، بی بی سی، واشنگٹن۔
خبر سچ ہے
اگر بی بی سی پر ہے۔
اور اب بھارت کے کرناٹک کی بات، جہاں آج سرکار پر نرنائک فیصلہ ہوگا۔ 2 دن پہلے مکھیمنتری پد کی شپتھ لینے والے بھاجپا ودھائک دل کے نیتا بی ایس یدیورپا سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق آج ہی ودھان سبھا میں اپنا بہومت ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج صبح 10:30 بجے سپریم کورٹ راجیہ پال کی اور سے بھاجپا نیتا کے جی بوپیا کی ودھان سبھا کے پروٹیم اسپیکر کے طور پر نیوکتی پر اپنی رائے بھی دے گا۔ بھاجپا اور کانگریس دونوں نے ہی اپنے پاس بہومت ہونے کا وشواس جتایا ہے۔ کانگریس اور جے ڈی ایس کے جو ودھائک پردیش سے باہر لے جائے گئے تھے، وہ دیر رات تک ہوائی جہاز اور بسوں کے ذریعے کرناٹک لوٹنے لگے ہیں۔ بنگلورو سے عمران قریشی کی رپورٹ سنیے۔
آج وہ دن ہے جب کرناٹکا ہی نہیں بلکہ سارے دیش میں ایک اتہاسک نرنے لیا جانے والا ہے، کیونکہ آگے کبھی ترشنکو ودھان سبھا کی استھتی بنی تو کرناٹکا کا ادھارن مثال بننے والا ہے۔ دراصل آج 2 معاملے چرچا میں رہیں گے۔ پہلا ہے پرکراتمک اور دوسرا راجنیتک پربھاو۔ پرکراتمک سوال پر آج سروچ نیالائے اپنا نرنے دینے والا ہے، جس سے طے ہوگا کہ کیا کوئی بھی سدسیہ پروٹم اسپیکر کا کام کر سکتا ہے یا صرف سب سے ورشٹھ سدسیہ۔ کل سروچ نیالے نے آدیش دیا تھا کہ وشواس مت کے لیے یڈیورپا کو 15 دن نہیں بلکہ صرف 24 گھنٹوں کا سمے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد راجیہ پال وجوبھائی والا کا آدیش آ گیا کہ کے جی بوپیا سدسیوں کو شپتھ دلوائیں گے۔ اس وشے پر کانگریس پروکتا رندیپ سرجے والا نے کہا،
راجیہ پال وجوبھائی والا نے تیسری بار پھر سمویدھان کا انکاؤنٹر آج کر ڈالا، جب انہوں نے تیسری بار چن کر آئے ودھائک کے جی بوپیا جی کو پروٹرم سپیکر نیوکت کر دیا۔ یہ وہی شری کے جی بوپیا جی ہیں جو پہلے سے ہی ڈینٹڈ ٹینٹڈ ہیں۔ یہ وہ شری کے جی بوپیا جی ہیں جنہوں نے بی ایس یدیورپا جی کی پچھلی سرکار کو بچانے کے لیے سمویدھان اور پرجاتنتر دونوں کی دھجیاں اڑا ڈالی۔
سادھارن طور سے سارے سدسیہ شپتھ لینے کے بعد سپیکر کو چن سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہی وشواس مت لیا جا سکتا ہے۔ پروٹم سپیکر کے پاس ایسی شکتیاں ہوتی ہیں کہ اس سے وشواس مت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی کے مد نظر کانگریس پکش کے جی بوپیا کے خلاف سروچ نیالیہ میں یاچکا دی ہے۔ اس یاچکا کی سنوائی کے بعد ہی شاید سدسیوں کا شپتھ گرہن شروع ہوگا۔ बहरहाल दूसरी तरफ इस विश्वास मत को राजनीतिक तौर से देखा जा रहा है। वरिष्ठ विश्लेषक त्यागराज शर्मा ने कहा,
मैं समझता हूँ उनको कम से कम 15 या 16 विपक्ष के विधायकों को किसी न किसी तरह मनवाना पड़ेगा कि कल वो विधानसभा में ना प्रस्तुत हों, क्योंकि अगर 15 या 16 लोग भी नहीं आते हैं वोट के टाइम पे, नंबर अपने आप कम हो जाएंगे और इनको फायदा होगा।
त्यागराज शर्मा का ये भी मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बहुमत साबित करने का समय घटाकर 24 घंटे कर दिए जाने के बाद बीजेपी के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर येडियुरप्पा कांग्रेस के अपनी ही जाति के लिंगायत सदस्यों को वोट ना डालने के लिए मना सके तो वो जीत सकते हैं। उन्होंने कहा,
कल बहुमत साबित ना कर पाए एक तरह से येडियुरप्पा के लिए बहुत फायदे की बात होगी, क्योंकि बाद में यही कारण को लेके वे जा सकते हैं लोगों के पास, देखिए इस बार फिर से जेडीएस ने एक बार और अब कांग्रेस ने मिलके एक लिंगायत को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और ये जो है खूब अपना फायदा उठाने के लिए ये एडवर्टाइज करते रहेंगे।
कर्नाटका में सरकार अब बीजेपी के लिए एक प्रदेश की सत्ता से बढ़कर प्रतिष्ठा का प्रश्न भी हो गया है। अगर येडियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर पाए तो जनता में ये संदेश जा सकता है कि बीजेपी नाजायज तरीके से सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि येडियुरप्पा पूरे आत्मविश्वास के साथ बहुमत साबित करने का दावा कर रहे हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
इस मसले पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं बेंगलुरु, जहां BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव मौजूद हैं। नितिन, क्या ताजा खबर है आपके पास?
ताजा खबर तो ये है कुलदीप कि बेंगलुरु जो है वो एक तरह से बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है, और विधानसभा, दरअसल यहाँ पर इसको विधान सौदा कहते हैं, विधानसभा जो है उसके 2.5 किलोमीटर के रेडियस में जो है कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा 9 बजे के बाद से। कोई कर्नाटका की जो रिजर्व पुलिस की प्लाटून है, कोई 10 प्लाटून और 2 रैपिड एक्शन फोर्स की प्लाटून यहाँ पे पूरे एरिया में डिप्लॉय कर दी गई है। प्रशासन को इस बात का डर है कि कहीं किसी भी विपरीत परिणाम या किसी उसके चलते स्थिति खराब ना हो। और जाहिर है सवाल राजनीतिक दलों का, तो सभी लोग कल रात शाम से अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे रहे हैं, क्योंकि आज वो मेन फ्लोर टेस्ट है जिसके बाद ये पता लगेगा कि होना क्या है। तो काफी गहमा गहमी वाला दिन होने वाला है, और ऐसा पिछले कुछ एक हफ्ते से हो रहा है। सोमवार से मैं हूँ यहाँ पर, हर अगला दिन जो है वो पिछले दिन से ज्यादा अहम और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता
जी।
है।
और नितिन, हम चाहते हैं कि जो बेंगलुरु से छपने वाले अखबारों में आज क्या छपा है, किन शीर्षकों के साथ छपा है, वो भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यहाँ का जो बड़ा पॉपुलर अखबार है, लोकप्रिय अखबार डेक्कन हेराल्ड, उसकी एक सुर्खी बड़ी दिलचस्प है। उसमें है कि येडियुरप्पा टू फेस फिफ्थ फ्लोर टेस्ट इन अ स्पैन ऑफ 11 ईयर्स, यानी पिछले 11 साल में येडियुरप्पा साहब जो है वो पांचवा अपना शक्ति परीक्षण जो है विधानसभा के फ्लोर पर करने जा रहे हैं। और अखबार ने पूरी हिस्ट्री दी है, उसने कहा है कि येडियुरप्पा साहब का जो पहला फ्लोर टेस्ट हुआ था विधानसभा में वो नवंबर 2007 में हुआ था, और उनकी 8 दिन की पुरानी सरकार जो थी वो दरअसल कोलैप्स कर गई थी। तो ये डेकन हेराल्ड का मामला की सुर्खी है। इंडियन एक्सप्रेस भी कहता है कि BFY टू टेक फ्लोर टेस्ट टुडे आफ्टर SC कट शॉर्ट टाइम गिवन, वही बात है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की जो सुर्खी है वो बहुत बेहतरीन है, वेयर इज द पार्टी टुनाइट, आज शाम दावत जश्न कहाँ होगा, ये अखबार क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ता है।
दावत भाजपा के दफ्तर में होगी या कांग्रेस के? बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव अखबारों की समीक्षा के लिए। दिल्ली से जो छपने वाले अखबार हैं वो भी मेरे सामने हैं, लेकिन एक अखबार की सुर्खी मैं पढ़ने चाहता हूँ। नवभारत टाइम्स ने शीर्षक लगाया है, सत्ते पे सत्ता, कर्नाटक में आज बहुमत साबित करने के लिए भाजपा को चाहिए 7 विधायकों का साथ, ये उन्होंने उपशीर्षक लगाया है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक में प्रो टेम स्पीकर की भूमिका को लेकर खासी चर्चा है। राज्यपाल ने भाजपा विधायक KG बोपैया को कर्नाटक विधानसभा का प्रो टेम स्पीकर नियुक्त किया है। इस फैसले को कांग्रेस और JDS ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा ने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से पूछा कि इस बार प्रो टेम स्पीकर का पद इतना अहम क्यों हो गया है।
देखिए, स्पीकर की या प्रोटेम स्पीकर की दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पर चूंकि इस बार अगर मत विभाजन होना है खासतौर से, वो परंपरागत रूप से प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं होती है। प्रोटेम स्पीकर खाली शपथ ग्रहण करा करके नए हाउस में सदस्यों को प्रवेश करा देते हैं और उसके बाद एक स्पीकर का अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसके बाद हाउस उनके पास चला जाता है, फिर बाकी प्रक्रियाएं होती है नए हाउस में। तो चूंकि इस समय एक स्पेशल किस्म का सेशन है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो इसलिए ये नए परिस्थितियां पैदा हुई हैं और इसीलिए कुछ संदेह और आशंकाएं लोगों ने व्यक्त की हैं जिनको लेकर के सारा विवाद है।
लेकिन सर, परंपरा रही है कि सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है, आरोप ये लगा रहा है, खासकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजनीति से प्रेरित है जो चयन है प्रोटेम स्पीकर का।
ये बात कही जा सकती है, राजनीति से प्रेरित है इसको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम खुल करके इतनी आसानी से बात कर सकते हैं कि जो राज्यपाल का फैसला है वो भी राजनीति से प्रेरित है और जो प्रोटेम का स्पीकर का निर्णय है वो भी राजनीति से प्रेरित ही है। एक मामले में ठीक है, इसकी कोई एक परंपरा रही है लेकिन कोई नियम नहीं है, इसलिए मान लेते हैं कि किसी जूनियर सदस्य को भी प्रोटेम स्पीकर बना दिया तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दो या तीन कारण हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा सोचना पड़ रहा है। एक तो बीजेपी का एक सदस्य कम हो जाएगा वोटिंग में, दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पक्ष में या कहिए कांग्रेस के खिलाफ जो बात जा सकती है वो ये कि हो सकता है कि कुछ सदस्य या कोई एक सदस्य या अनेक सदस्य अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के बजाय, जैसे कांग्रेस के बजाय बीजेपी के पक्ष में वोट दे दें जैसा कि अंदेशा है। तो सामान्यतः हाउस में अब चूंकि दल बदल कानून की वजह से ऐसा संभव नहीं था और सदस्यता समाप्त हो जाती है, यहाँ पर शायद प्रोटेम स्पीकर ऐसी भूमिका अदा नहीं करेंगे और उस वोट को काउंट करेंगे और उसके बाद तय हो जाएगा कि सरकार हारी या जीती। तो इसलिए यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की भूमिका को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बाकी ये है कि ये जो परंपरा की बात है तो ये प्रोटेम स्पीकर पहले भी रह चुके हैं सदन में और उस वक्त कोई ऐसी आपत्ति किसी ने नहीं की थी, इस बार की है क्योंकि कुछ विवाद इनके पहले भी रहे हैं हाउस के अंदर जब येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे 2011 के आसपास, तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में कुछ इनके आलोचना भी हुई है, तो विवाद का विषय तो है।
प्रमोद जी, जैसे राज्यपाल वाजुभाई आर वाला जी ने चाहा और येदुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दे दिया, वैसे ही क्या जो अभी प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया जी हैं वो चाहे तो कुछ कर सकते हैं क्या सदन में?
देखिए, कर तो ऐसा कुछ नहीं सकते क्योंकि जो कुछ भी करना है सदस्यों को करना है, इनको चूंकि भूमिका नियंत्रण करने की है या संचालन करने की है, किसी एक व्यक्ति को तो संचालन करना होगा और जो हाउस के अंदर सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो स्पीकर होता है वहाँ पर। कई बार अंदेशे होते हैं कि विवाद होगा, झगड़ा होगा, अंदेशे हैं, वो अंदेशा आज के जो मत विभाजन को लेकर के भी है तो वो अंदेशा सही होगा गलत होगा ये तो शाम तक पता लगेगा।
वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी को सुन रहे थे आप। कर्नाटक पर बड़ी खबर के चलते आज शाम को हम आपको इंडिया बोल कार्यक्रम की जगह दिन भर कार्यक्रम सुनवाएंगे जिसमें इस खबर पर विशेष कवरेज आप सुन सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच हुई ताज़ा गोलीबारी से तनाव बढ़ गया है और आज ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की दो दिन की यात्रा पर पहुँच रहे हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
सैन्य प्रवक्ता के अनुसार जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों आरएसपोरा, अरनिया और बिश्ना में पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की जिसमें एक बीएसएफ जवान और चार नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय सेना की फायरिंग में तीन बच्चों सहित एक ही परिवार के चार लोग मारे गए। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर यह तनाव ऐसे समय बढ़ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर की दो दिन की यात्रा के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार ने पहले ही रमजान के महीने में चरमपंथियों के विरुद्ध जारी ऑपरेशन ऑल आउट को रोक दिया है। सीमा पर घटी घटनाओं पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिंता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि युद्ध विराम का उल्लंघन करके रमजान का अपमान किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी किया गया था। प्रधानमंत्री की यात्रा के विरुद्ध अलगाववादियों के संगठन हुरियत कॉन्फ्रेंस ने आज बंद का आह्वान किया है। हुरियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कहते हैं, आज इन्हें कश्मीरियों के मन की बात सुननी चाहिए।
सड़कें भी हमने देखी है, रेल की गाड़ियां भी चली, जोजिला टनल भी बनेगी, बानिहाल और कश्मीर के दरमियान पहाड़ों को भी जोड़ा जाएगा, एयरपोर्ट भी बन जाएंगे, लेकिन ये कश्मीरियों के मन की आवाज नहीं है।
ऑपरेशन रोकने की सीज फायर घोषणा को अलगाववादियों ने नुमाइशी बताया है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ बातचीत करनी होगी, तभी शांति बहाल होगी।
जब तक ये चीजें नहीं हो जाती, तो ये एक महीने का आप मेरे ऊपर रहम कर रहे हो, ये तो कॉस्मेटिक मेजर है। क्या खुदा के लिए ये कोई इससे कोई फर्क पड़ सकता है जमीन पे?
विधायक इंजीनियर रशीद ने भी प्रधानमंत्री के दौरे पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है।
और हमने फैसला किया है जब मोदी जी आएंगे, अवामी इत्तेहाद पार्टी काले झंडों के साथ उनका इस्तकबाल करेगी।
इंजीनियर रशीद का कहना है कि सीज फायर का फायदा तब है जब इससे बातचीत का आरंभ हो जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर के गुरेज इलाके में 330 मेगावाट क्षमता वाले किशनगंगा बिजली प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो लेह जाएंगे और कल जम्मू की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन से संबोधित होंगे। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
और आज चर्चा में रहेगी ब्रिटेन की शाही शादी भी। लंदन के पास विंडसर में ब्रिटिश राज परिवार के प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का आज विवाह समारोह होगा, जिसे देखने के लिए वहां काफी भीड़ भी जुट रही है। इस खबर पर और जानकारी के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं मानसी दास। मानसी, आज ब्रिटेन की सबसे बड़ी खबर यही है?
जी, जैसा आपने बताया, शाही राजकुमार हैरी और मेगन मार्कल आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। प्रिंस हैरी महारानी एलिजाबेथ के पोते और प्रिंस चार्ल्स के छोटे बेटे हैं। उनकी होने वाली पत्नी मेगन मार्कल अभिनेत्री हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये ब्लॉगर के तौर पे भी पहचानी जाती हैं। कम उम्र में ही उन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच समानता के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया था, और यही वजह है कि शादी समारोह में उन्होंने पति की हर आज्ञा का पालन करने की कसम लेने वाली जो रस्म होती है उससे इनकार कर दिया है। इस समारोह के लिए आम जनता में से कुछ 1200 लोगों को न्योता दिया गया है, और इनमें कई वो लोग हैं जो चैरिटी के कारण जाने जाते हैं।
जी मानसी, और ये बताएं कि शादी को लेकर इतनी उत्सुकता और इतनी रुचि लोगों में क्यों है?
जाहिर सी बात है, राजकुमार की शादी है। खैर, जहां तक इस विवाह समारोह को लेकर लोगों की रुचि की आप बात कर रहे हैं, तो कल रात से ही सैकड़ों की संख्या में लोग विंडसर की सड़कों पर डेरा जमा चुके हैं, ताकि वो विवाह समारोह को जब वो शुरू हो तो उसे अच्छे से देख सकें। बीबीसी के शाही मामलों के संवाददाता जॉनी डायमंड कहते हैं कि ऐसी शाही शादियाँ इन दिनों शाही परिवार को रीलॉन्च करने का भी अवसर होती हैं। ऐसी बड़ी और दुर्लभ शाही शादियाँ पूरी दुनिया का ध्यान खींचती हैं, तो इस तरह इस मौके को ये मौका कुछ इस तरह प्रतिनिधित्व करती है जो कहे कि देखिए, इन दिनों शाही परिवार का मतलब है ये लोग।
शाही परिवार का मतलब है ये लोग। बहुत शुक्रिया मानसी दास। अब इंदु पांडे से खेल समाचार सुनिए।
राफेल नडाल ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को आसानी से हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जबकि नोवाक जोकोविच ने 2018 में पहली बार किसी टूर्नामेंट के अंतिम आठ में पहुंचकर वापसी की झलक दिखाई है। नडाल ने शापोवालोव को 6-4, 6-1 से हराया। इस 31 साल के खिलाड़ी का अगला मुकाबला इटली के फैबियो फोगिनिनी से होगा, जिन्होंने जर्मनी के पीटर गोंजोविस्की को पराजित किया। अगर नडाल यहां अपना आठवां खिताब जीतने में सफल रहते हैं, तो वो रोजर फेडरर की जगह फिर से दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन सकते हैं। रोम में 4 बार खिताब जीतने वाले जोकोविच को ऑस्ट्रेलियाई ओपन से पहले चोट की वजह से 6 महीने तक कोर्ट से बाहर रहना पड़ा था, और एक बार फिर से मारिया शारापोवा का जादू चला टेनिस कोर्ट में। उन्होंने डारिया गावरिलोवा को 6-3, 6-4 से हराया। अब वो फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना ओस्टापेंको का सामना करेंगी, जिन्होंने ब्रिटेन की जोहाना कोंटा को 2-6, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। और आईपीएल में आज 2 मैचेस होने हैं, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और दूसरा मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। क्यूबा की राजधानी हवाना में हुए एक विमान हादसे में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा होजे मार्टी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास हुआ। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल भारतीय जनता पार्टी को शनिवार 4 बजे तक कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। अमेरिका के राज्य टेक्सास में एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इतने ही लोग घायल हो गए। गोलीबारी की इस घटना में एक 17 वर्षीय स्कूली छात्र को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगान ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ इसराइल के बर्ताव की तुलना दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों की तरफ से यहूदियों के साथ किए गए बर्ताव से की है। ब्रिटेन में राजकुमार प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की आज शादी है। लंदन में होने वाली इस शाही शादी के समारोह में दुनिया भर से कई लोग हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। पूर्वी अफगानिस्तान में एक क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को एक आत्मघाती बम धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया देवाशीष ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया प्रशांत चहल ने। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। पढ़ते रहिए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। नमस्कार।